नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ओमान तट पर टैंकर MT सेट्टेबेलो पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के बाद ये बातचीत हुई। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। केरलम स्थित प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर कल से मलयालम माह मिथुनम की पूजा के लिए खुलेगा। तांत्री कंदारारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में मेल संथी ईडी प्रसाद शाम 5 बजे गर्भगृह के द्वार खोलेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।